તારીખ 21/12/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 511 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 97
संसारी जीव को ज्ञान प्रकट रहा है उस विषय में जो व्याख्या कही है जो व्याख्यान किया है उसमें प्रति समय संसारी जीव अनंत कर्म का व्यवसाय करता है। व्यवसाय माने व्यापार करता है यानी कमाई करता है। अनंत कर्म बांधने की कमाई करता है। समय और अनंत काल से अनंत कर्म का बंध करता आया हुआ है। अनंत काल से जो कर रहा है ऐसा कहा है यह बात तो यथार्थ है। जो जिनने ये बात कही है वो बात तो यथार्थ है। संसार में परिभ्रमण करने वाला चीज तो बहुत कर्मबंध हो रहा है और यही अज्ञान का फल है ऐसा कहा है। अज्ञान के कारण से ये हो रहा है। वहां आपको परंतु वहां आपको ये प्रश्न हुआ इस विषय में एक प्रश्न आशंका उठी है कि तो ऐसे अनंत कर्म निवृत्त करने का अनंत कर्म का नाश करने का साधन चाहे जैसा बलवान हो तो भी अनंत काले अनंत काल पर्यंत भी उसका अंत नहीं आ सकता। प्रश्न ये है कि एवं अनंत कर्म निवृत्त करवानु साधन गमे तेव बलवान हो तो अपन अनंत काल में प्रयोजन पण ते पार पड़े नहीं। आटला बदा अनंत कर्मो बंधाणा हो छूटवा माटे पण अनंत काल जोईए। अनंत कर्म को छूटने के लिए अनंत काल चाहिए क्या? एक समस्या खड़ी होती है। यद्यपि केवल ऐसा ही हो तो आपको जो लगा है ऐसा ही संभव है। जो खरे खरे है वो आपको तो अनंत काल लागे। तथापि श्री जिन ने प्रवासे जीव को अनंत कर्म का करता है अनंत कर्म का करता कहा है। अनंत काल से कर्म का करता व चला आता है ऐसा कहा है। तो प्रवाह अपेक्षा से बात है। काल की प्रवाह अपेक्षा से बात है। मतलब क्या कि कर्म तो प्रति समय अनंत बंधन होता है और वो बंधन चालू रहता भी है। साथ साथ उदय आते हैं इतने खिल भी इतने खिलते भी हैं दोनों बात है उसमें। परंतु समय समय में अनंत काल भोगना पड़े ऐसे कर्म वो आगामी काल के लिए उपार्जन करते हैं ऐसा ऐसा नहीं कहा है। ये कर्म जो बंधे हुए हैं वो अनंत काल तक भोगने पड़ेंगे ऐसा नहीं कहा है। उसकी स्थिति है। कर्म जो बंधते हैं उसमें एक पहलू ऐसा भी है कि जिसको हम स्थिति बंध कहते हैं। प्रकृति बंध स्थिति बंध अनुभाग बंध और प्रदेश बंध ऐसे बंध के कर्म के बंध के चार पहलू हैं। उसमें स्थिति बंध का मतलब यह है कि अमुक काल पर्यंत वो जीव के साथ बंधा हुआ रहता है जीव के प्रदेश मैंने जीव के क्षेत्र के साथ बंधा हुआ रहता है और उस काल की मर्यादा पूरी होते ही वो उदय में आकर के गिर जाते हैं, वो बंध छूट जाता है, मिट जाता है। जैसे प्रति समय अनंत कर्म बंधते हैं वैसे प्रति समय आठों कर्म का उदय भी है, उसका भोगल का भी है और वो भोगने पर वो चले जाते हैं। ऐसे आवृत्ति और निवृत्ति दोनों हैं, कर्म आते भी हैं एक समय में, कर्म जाते भी हैं। ये बात जरूर है कि अज्ञान दशा में आते हैं ज्यादा और जाते हैं कम। भोगने में आते हैं वो तो उदयवान होते हैं, उतने ही भोगने में आते हैं और बंधते हैं ज्यादा। इसलिए बंधन बढ़ता रहता है और क्रमशः वो बंधन बहुत बढ़ जाने से जीव नीचे नीचे वाली दशा को, अधिक बंधन वाली दशा को प्राप्त होता है, ज्यादा ज्यादा पराधीन होता रहता है। मनुष्य में पराधीन है, इससे ज्यादा तिरिंज में पराधीन है। जैसे बैलगाड़ी का बैल है, पराधीन कितना है। मनुष्य अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकता है, कुत्ता क्या कर सकता है, बिल्ली क्या कर सकती है, उनको तो घर घर भटकना पड़ता है। तो ज्यादा बंधन ज्यादा स्वतंत्रता, जितनी ज्यादा बंधन उतनी ज्यादा स्वतंत्रता। तो प्रति समय जीव को कर्म का बंधन ज्यादा होता है संसार अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, और वो जाते हैं कम होते हैं, खींचते हैं वो कम होते हैं। किंतु ऐसे कोई कर्म नहीं है कि जिसकी स्थिति अनंत काल पर्यंत की होती हो और अनंत काल पर्यंत वो भोगने ही पड़े, ऐसे किसी की स्थिति नहीं है। जो भी बंधते हैं तो अपनी मर्यादा को लेकर के बंधते हैं और उस मर्यादा में वो कर्मबंध छूट जाता है। आठ प्रकार के कर्म की प्रकृति है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, आयुष, नाम, पुत्र, बेटी। उसमें स्थितिबद्ध की मर्यादा उत्कृष्ट कितनी है कि स्थितिबद्ध की मर्यादा 70 कोड़ा कोड़े सागर, कितना 70 कोड़ा कोड़े सागर, हिंदी में 70 कहते हैं, अपने गुजराती में 70 तो उत्कृष्ट मर्यादा है, वो भी मोहनी, दर्शन मोहनी की प्रकृति की। इससे ज्यादा बाकी के सात कर्म की जो प्रकृति बन प्रकृति की स्थिति है वो इससे कम होती है। पर ये भी उत्कृष्ट है, जो तीव्र में तीव्र दर्शन मोहनी का बंध हुआ उत्कृष्ट स्थिति से, तो 70 कोड़ा कोड़े सागर से ज्यादा नहीं है। 70 करोड़ सागर मल्टीप्लाइड बाय 70 करोड़ सागर, ऐसा तो कर्मों के अनुभव रस होते हैं, फिर भी वो अनंत काल नहीं है, उसका भी अंत है। अनंत नहीं है किंतु उसका भी अंत है। इसलिए कोई कर्म ऐसे नहीं है कि जो अनंत काल जीव को भोगना पड़े, ऐसे कोई कर्म नहीं है, ऐसा श्री जी ने कहा है। अपनी भूमिका में किस तरह से लागू होता है या प्रयोजन होता है, या ऐसा विषय हमारे सामने आया स्वाध्याय में, तो हमारे परिणाम इस स्वाध्याय करते हुए किस प्रकार से होने चाहिए, यथार्थ ठीक यथार्थ रूप से हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए। तो मुमुक्षु को ऐसा लगना चाहिए कि अरे मैं ज्ञान दशा में हूं, श्री जिनदेव ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत कर्म का बंध करने वाला हूं, तो बहुत कर्म का मैं दंड करने में करने वाला हूं, तो मुझे कम से कम बंधन हुए ऐसा कुछ उपाय कर लेना चाहिए, मेरा बंधन छूट जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय मुझे ढूंढ लेना चाहिए, ऐसा उनको लगना चाहिए।
जैसे अगर वो सोचे कि चलो ज्यादा से ज्यादा बंध वाला नहीं करे, कम से कम बंध वाला करे तो चलेगा?
कम होते होते निवृत्त हो जाएगा, एक साथ तो सब जाएगा नहीं,
मतलब वो तो ठीक है, कम होते होते अभाव होगा। हाँ। वो तो क्रमशः उत्तरोत्तर दिशा में ही जाएगा। हाँ। ये बात तो ठीक है, पर अगर हम ये सोचते कि जिसमें ज्यादा परिणाम बिगड़ते हैं वो ज्यादा कर्मबंद होते हैं, वैसा काम नहीं करते हैं, चलो पुण्य के भाव तो अच्छे हैं,
ऐसा समझ ज्यादा होता है, दर्शन के साथ पुण्य बनता है तो उसमें भी ज्यादा स्थिति पड़ती है, ज्यादा कर्म बनता है, ऐसा नहीं, हमको बंधन नहीं हो गए। और वर्तमान में अभी भी बिल्कुल बंधन नहीं हुए ऐसी हमारी परिस्थिति है ही नहीं, जिस स्थिति में हम गुजरते हैं उसमें आज ही सर्व प्रकार के कर्म बंध का अभाव हो जाए, अभी ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं, ये अज्ञान दशा है, ज्ञान होगा फिर गुणस्थान चढ़ेंगे, फिर 14वें गुणस्थान में सभी प्रकार का कर्म बंध का अभाव होगा, 14 गुणस्थान चढ़ेंगे तब, जब ये मोक्ष मार्ग की स्थिति क्रमशः आगे बढ़ने की है, तो हमको इस मोक्ष मार्ग में मोक्ष के ध्येय से प्रवेश करके जितना हो सके उतना जल्दी कर्मबंध का नाश कर लेना चाहिए। मतलब जिस कर्मबंध से भव भ्रमण हो रहा है उसकी चिंता सबसे पहले मुमुक्षु को उत्पन्न होनी चाहिए, नया मुमुक्षु हो तो उसको क्या होना चाहिए, अरे समय समय पर मुझे बहुत नुकसान है, इतना नुकसान है, भगवान कहते हैं कि तुम बहुत अपना नुकसान करते हो, तो उस नुकसान से बचने के लिए तो भव भ्रमण का भय जो है तो जीव को सबसे पहले आना ठीक है। बंधन से छूटना इसका मतलब मुक्त होना, यही प्रयोजन को पास है, उसे इस विषय के साथ जो प्रयोजन जुड़ा हुआ है वो उतना है कि हमको कर्मबंध नहीं करना है, हमको बंधाना नहीं है, लेकिन परिणाम तो होते हैं, किसी खुशा लगती है तो पानी पीने के लिए भाव आता है, भूख लगती है तो खाने के लिए आता है, तो आज आप तो ऐसे परिणाम नहीं है कि हम शुक्र ध्यान में स्थिर होकर के सभी परिश्रम को जीत करके मुक्त हो जाए, तो जितना हो सके उतना कम कर देना चाहिए, तो उसमें पहले जो है बंध में जो ताकत है वो अनुभाग की ताकत है, अनुभाग को बहुत सरल भाषा में फलदान शक्ति कहते हैं, क्या अनुभाग माने क्या, कर्म को फल देने की शक्ति है उसको अनुभाग बंध कहते हैं, तो पहले तो उनकी शक्ति को तोड़े, तो कैसे टूटे कि जीव के विभाव परिणाम के जितने रसमुद होता है उतना अनुभाग टूटता है, उतने कर्म को फल देने की शक्ति टूटती है, कर्म तो प्रति समय बंधेगा ही बंधेगा, 13वें गुणस्थान तक बनता है, क्या 13वें गुणस्थान में अरियंत देव को भी योगाश्रम होता है, उसको अनुभाग बंध उतना नहीं पड़ता है, स्थिति बंध उतना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको कषाय नहीं है, कषाय से स्थिति अनुभाग पड़ता है, तो कषाय तो उनको है नहीं, लेकिन योग है, कंपन है तो आश्रम होता है, एक समय के लिए आता है कर्म, एक समय उसकी स्थिति रहती है, दूसरे समय वो खत्म हो जाता है।
घर से निकला चलते चलते, घर से निकला एक साथ चलो जल्दी चाहता जल्दी प्रवर्तन, चलते चलते लिफ्ट में दे हो गया, अरे दे पर भाव ऐसा है कि जल्दी चले, तो वो किस प्रकार का कर्म इसमें बांधा जाता है?
उसमें शुभ भाव का बंध होगा,
आठ कर्म साथ में उदय में आते हैं
उसमें क्या समय समय आतुरता होती है कि हमको जल्दी पहुंचना है, लेकिन जल्दी पहुंचने की व्यवस्था नहीं बैठ रही है तो आकुलता तो होगी ही होगी।
थर्ड फ्लोर पे आएगा फिर इलेवन फ्लोर पे चला जाएगा तो लेते 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 नीचे आ गए पांच मिनट ऐसा लगता
है तो टाइम तो लग जाएगा
टाइम लेट थोड़ा आकुलता होगी जल्दी पहुंचे जल्दी पहुंचे
तो उसमें शुभ भाव का बंद होगा स्वाध्याय के लिए जाना हो तो और घर काम के लिए जाना हो तो अशुभ भाव का बंद होगा। भाव शुभ भाव और अशुभ भाव सुबह संबंध होते हैं और हमें ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि जब हमको जिस टाइम पर पहुंचना है हम पाँच सात मिनट जो पहले मंगलाचरण होता है उसी टाइम पर पहुंच जाए तो अच्छा है। एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम में पहुंचना पड़ता है काउंटर क्लोज हो जाएगा तो पहुंचना पड़ता है कि नहीं पहुँचना पड़ता है
वहाँ सब तरह का विवेक रख लेते हैं लिफ्ट वो मिल गया रास्ता जाम मिल गया तो इतना मार्जिन रख के चलो
पता है बहुत लंबा रास्ता है और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होता है तो सब प्रकार का मार्जिन रख करके हम गाड़ी में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं तो इधर भी तो हमारे सुबह के जो नित्य कर्म है नाना वगैरह तो सब उतना उस टाइम में कर ले कि हम 15 मिनट पहले घर में तैयार हो फिर आ जाएंगे आराम से तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे तो उस प्रकार की व्यवस्था हमें नियमित रूप से बनानी चाहिए वो भी शुभ भाव है। ऐसा नियमित होना वो भी शुभ भाव है और कभी कोई कारण वशात देरी हो गई और आकुलता बन गई तो वो भी शुभ भाव है।
या तो वो मुक्ष तो ऐसे लेगा कि बंद जो है वो बंद है वो मुक्ष का कारण नहीं है
वो तो है ही। प्रश्न तो वो था कि हमारे ऐसे परिणाम हो गए इससे हमें बंद किस प्रकार का होता है इतना ही प्रश्न है बंद तो हो गए
तो हमारा आगे का प्रश्न है
ठीक है
कि बंद तो है बंद है बंद जो है वो मुक्ति का कारण नहीं है
बंद है वो मुक्ति का कारण नहीं है इसलिए हमें मुक्त होना है
उसके लिए क्या
तो हमारे अबंध परिणाम कैसे हो बंद रहित अबंध परिणाम असंग तत्व में असंग भाव कैसे हो ऐसे हमारे परिणाम होने चाहिए जिससे बंद नहीं होगा अकेली निर्जरा होगी बंद नहीं होगा
वो सिर्फ ज्ञानियों को ही होती
सम्यक प्रकार से अबंध दशा ज्ञानियों को ही होती है और सम्यक प्रकार की संवर निर्जरा भी ज्ञानी को ही अज्ञानी को किसी हालत में इसलिए नहीं होता है कि अज्ञानी जीव अपने विभाव परिणाम में भाव से भी पूरा पूरा बंध जाता है जो भी वो विभाव विकार करता है उस परिणाम में पूरा का पूरा वो अपने को महसूस कर लेता है तो भाव का पूरा बंधन है तो फिर उसमें बंध पूरा होगा उसमें अबंध पड़ा जरा भी नहीं होगा बंध पूरा होगा मैंने अबंध पड़ा बिल्कुल नहीं रहेगा पूरा बन जाता है भाव से तो द्रव से भी बंधन होगा जैसे जैसा भाव वैसा द्रव बंधन भाव कर द्रव कर निमित्त निमित्त के रूप से होते जाते हैं
मुक्त जीव फिर कैसे छूटेगा मुक्त जीव अबंध परिणाम कैसे करेगा
मुमुक्ष जीव अबंध परिणाम का पुरुषार्थ प्रयास प्रयत्न मंत्र होता है उसी का नाम मुमुक्ष है वो प्रयास सफल जब होता है उसका पुरुषार्थ सफल होता है तब अबंध दशा को प्रारंभ करता है अपने चतुर्थ अनुष्ठान से ज्ञान विषय के पहले उनका ज्ञान दशा प्राप्त करने का पुरुषार्थ होता है उसी का नाम मुमुक्ष होता है अगर पुरुषार्थ नहीं होता है तो इसका नाम मुमुक्षता भी नहीं है तो शास्त्र पढ़ना वो कोई मुमुक्षता नहीं है क्या मंदिर जाना उपाश्रय जाना वो कोई मुमुक्षता नहीं है माला फेरना वो कोई मुमुक्षता नहीं है उपवास करना वो कोई मुमुक्षता नहीं है पर समीर शिखर की यात्रा करना वो भी मुमुक्षता नहीं है
वो छोड़ी देखा
छोड़ दे तो फिर क्या करेगा, ना तो क्या करेगा, वो बात है। सिर्फ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, उसका नाम मुमुक्षुता है। 254 पत्र में क्या, सिर्फ मोक्ष के लिए प्रयास करना, इसी का नाम मुमुक्षुता है। अपने भाव कहाँ
देखे,
क्या है उदय भाव है, बंध के कारण है ना, देखने का ज्ञान बंध का कारण नहीं है, लेकिन जो उदय भाव है वो तो बंध का कारण है। और जहाँ तक ज्ञान दशा उत्पन्न नहीं होती है, वहां तक उदय भाव में जीव को पूरा का पूरा अपने आप को अनुभव करता है, मुझे क्रोध हुआ, पूरा बंधता है, भाव से पूरा बंध जाता है।
मैं काम
उसमें खोज करे कि मैं ज्ञान में हूँ या मैं क्रोधादि में हूँ, ऐसा करके वेद ज्ञान का प्रयास करके ये वेद ज्ञान सफल हो जाए, और वेद ज्ञान का फल स्वरूप एक दफे निर्विकल्प सिद्धोपयोग प्राप्त हो जाए, वहां से अलग दशा चालू होती है। गुणस्थान की बदली सिद्धोपयोग में होती है, कहाँ होती है, सभी संसारी जीव पहले गुणस्थान में है, तो चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्ग में आता है तो पहले निर्विकल्प दशा होती है, फिर स्वविकल्प दशा में चतुर्थ गुण स्थान की परिणति चालू रहती है, शुद्ध परिणति, वो अबंध दशा है। और जितना बंद है उतने अंश में वहां बंद है, वहां पूरा बंद नहीं है, आंशिक बंद है, मोक्ष मार्ग में नहीं। अज्ञान दशा में पूरा बंद भाव है, और अज्ञान दशा में, ज्ञान दशा में आंशिक बंद भाव है। फिर जब पंचम गुण स्थान में आरंभ होगा तब निर्विकल दशा में वो आगे बढ़ेगा, जोर से निर्विकल दशा आएगी। फिर दीक्षा लेकर के मुनि अवस्था में आएगा तो पहले सप्तम गुण स्थान आएगा, पहले छठवां गुण स्थान नहीं आएगा, क्योंकि छठवां गुण स्थान स्वविकल्प दशा का होता है और सातवां गुण स्थान निर्विकल दशा का। तो मतलब क्या है इसका, अबंध परिणाम है वो निर्विकल्प दशा आने पर ही शुरू होता है, इसके पहले मुमुक्ष को अबंध दशा का कोई अंश प्रकट नहीं हुआ है। तो मुमुक्षु है इसलिए अबंध दशा का प्रयत्नवंत उद्यमवंत जरूर है, उतनी बात है। ना इस लाइन में, इस मार्ग में, इस मार्ग की जो सुंदरता है वो यही है कि इसका सही प्रयत्न करने से सफलता होती ही है, अवश्य होती है। एक भी अनंत पुरुषार्थ में सफल होने वाले में एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि वे निष्फल गया, लेकिन पूरी ताकत से, सही नियत से पुरुषार्थ होना चाहिए, तो बात है। संसार में ऐसा नहीं है, संसार में तो आप बाजार में जाओगे, व्यापार करोगे, धंधा करने में सफलता होगी और नहीं भी होगी, आज कमाई किया कल नुकसान भी किया, यहाँ ऐसा नहीं होता है, इतना अच्छा है।
अच्छा, रस का जो अभाव है, कषाय रस का अभाव सिर्फ ज्ञान ही होता है, और कषाय रस की मंदता मतलब क्रमशः अभाव की ओर बढ़ती है, वैसा मुमुक्षु को, तो यही कारण है कि कर्म जो संवर और निर्जरा है वो ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को होता और मुमुक्षु को नहीं होता, इसका यही कारण है।
हाँ, यही कारण है, रस मंद होता है, रस का अभाव नहीं होता, और ज्ञानी को रसमंद भी होता है और रस का अभाव भी कुछ अंश में होता है, दोनों बात है हमारा, इसका ये कारण है कि आत्मा के प्रमुख तीन गुण जो है दर्शन ज्ञान चारित्र, तो दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम अगर आत्मा में लगते हैं तो अनंत दशा को प्राप्त होते हैं, जितने अंश में लगते हैं उसमें, बाकी के अंश में बंद भाव होता है। अब जिसको आत्मा का आश्रय हुआ नहीं, पहचाना नहीं, भाव भाषण हुआ नहीं और अवलंबन आकर के उसका आधार नहीं मिला है तो अनंत दशा कैसे प्राप्त होगी? आत्मा स्वयं अवध स्वरूप है, जिसके अवलंबन से अवध दशा होती है, जिसको इसका अवलंबन हाथ नहीं आया उनको अवध दशा होने का से समझ नहीं सकते। लेकिन वो अवध दशा का प्रयत्नशील है, उद्यमवंत है तो उसका रस मंद हो जाएगा, वो तो मंद होकर के एक दफे निर्विकल्प दशा में उसका अभाव करेगा। जब प्रथम निर्विकल्प दशा आती है उस वक्त बिल्कुल विभाव का रस का भाव होता है एकदम, क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो वहाँ विभाव है ही नहीं, इसलिए वो अपना हो गया।
प्रयत्न का जो परिणाम हो रहा है, जो मेरा परिणाम हो रहा है वो प्रयत्नशील है यानी इसी को चेक करना रहा, इस उस तरफ हम प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर परिणाम में हमको यही चेक करना रहता है।
हाँ, वो हमारा ख्याल में होना चाहिए, वो सहज रूप से हमारे ख्याल में हमारे ध्यान में होना ही चाहिए। अगर हमें जागृति है तो वरना तो स्मरण कर करके चेक करेंगे तो चेकिंग टाइम में चेक करेंगे, बाकी के टाइम में बात खत्म होगी, ऐसा हमारी जागृति ऐसी होनी चाहिए। उनको ख्याल रहे कि हमारे परिणाम कैसे कैसे होते हैं, तो जो अवलोकन की जिसको प्रैक्टिस है और अपूर्व भावना के साथ जिसका अवलोकन अवलोकन रहता है उनको सहज ऐसा बनता है। क्या कहते हैं? तथापि श्री जीन ने प्रवाह से जीव को अनंत कर्म का कर्ता कहा है, अनंत काल से कर्म का कर्ता और चला ऐसा कहा है, परंतु समय समय प्रति समय अनंत काल भोगना पड़े ऐसे कर्म वह भविष्य काल के लिए उत्तम करता है ऐसा नहीं कहा, कि वो प्रति समय अनंत काल भोगने पड़े ऐसे कर्म को मानता है ऐसा नहीं है, उसकी स्थिति मर्यादा होती है। इसलिए भले ही अनंत काल तक कर्म का उदय चला आता है जो बंधे हुए हैं इनका, फिर भी उसका बंधन अनंत काल पहले नहीं हुआ है, कुछ काल पहले ही हुआ है। कोई जीव आश्रय यह बात को दूर रख करके विचार करते हैं तो ऐसा कहा है कि सर्व कर्म का मूल ऐसे जो ज्ञान हो परिणाम अज्ञान और मोह के परिणाम वह वर्तमान में जीव को ऐसा और ऐसा चालू है कि जो परिणाम से अनंत काल उसको भ्रमण हुआ है और जो परिणाम चालू रहेगा तो वर्तमान में भी ऐसे ऐसे अनंत काल परिभ्रमण होएगा और भी कभी भी अनंत काल परिभ्रमण होएगा। क्या कहते हैं? कोई जीव आश्रय बात को दूर रख करके, कोई जीव आश्रय मैंने कौन के जो मुमुक्षु है यथार्थ प्रयत्नवंत है जिसका अज्ञान और मोह बंद हो गया है, क्या जिसका अज्ञान भी टूटने लायक हो गया है, जिसका मोह भी छूटने दर्शन मोह भी मिटने लायक हो गया है, ऐसा कोई पुरुषार्थवंत मुमुक्षु है उसको छोड़ करके हम बात कर रहे हैं, मर्यादित बात कर रहे हैं। क्यों? कि पहले वो बात क्या कहा कि ज्ञानी को ऐसा होता है अज्ञानी को ऐसा होता है, तो हम तो रहे अज्ञान, हम क्या करें? नहीं, उसमें एक प्रकार और भी है, जो सच्चा मुमुक्षु है, प्रयत्नशील है, उसको छोड़ करके हम कहते हैं, ऐसा करके बात चला रहे हैं। कोई जीव आश्रय यह बात को दूर रख करके क्या है भव और अज्ञान, ऐसे परिणाम फिलहाल भी वर्तमान में जीव में वैसा का वैसा चला आता हो, टूटने लायक नहीं हुआ हो प्रयत्न से, वैसा का वैसा चालू रहा हो, भले ही पूजा भक्ति करता हो, शास्त्र स्वाध्याय करता हो, कुछ भी साधन करता हो, लेकिन अज्ञान हो वैसा का वैसा चालू रहा हो, तो उसको जो है तो परिणाम उसका बंध जो है वह अहंकार चालू रहने वाला है, उसको मोह और अज्ञान को उतना उपशम करना चाहिए, उतना पतला कर देना चाहिए कि वो टूटने के लायक हो जाए। उसमें विक्रम पड़ता है कि पहले वो रस बंद होता है, उसकी अज्ञान और मोह की शक्ति, पहले उसकी शक्ति टूटती है, फिर वो भाव को प्राप्त होता है, ऐसा क्रम वहां भी पड़ता है रस के माध्यम से देखे तो।
यहाँ जैसे सिर्फ मोह और अज्ञान लिया है, अज्ञान में मोह ऑटोमेटिक आ गया, पर फिर भी दोनों को अलग अलग लिया है, तो कुछ विशेष जोर देने के लिए
नहीं,
या कुछ
मोह है वो श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है, और अज्ञान है वो ज्ञान गुण की विपरीत पर्याय है, जबकि दोनों हमेशा साथ में रहता है, सम्यक्त्व और सम्यक ज्ञान साथ में रहता है अविनाभावी रूप से, और वो और अज्ञान हमेशा साथ में रहता है, ऐसा होता है, इसलिए दोनों की बात नहीं, दोनों प्रधान गुण है, और प्रधान गुण के वो परिणाम है, विपरीत भी साथ में होता है, अविपरीत भी साथ में होता है, ऐसा होता है। हाँ, दर्शन वो होता है, वहां चारित्र मोह तो होता ही है, लेकिन चारित्र वो होता है वहां दर्शन वो होता है, ऐसा ज्ञान दशा में नहीं होता है, ज्ञानी को चारित्र वो होता है, तो चारित्र मोह के साथ जैसे अज्ञानी के परिणाम हुए वैसे उसके परिणाम होते हैं, लेकिन वहां दर्शन मोह का अभाव होता है, तो उतना अंतर है, पर सबसे भयंकर जो है वो दर्शन मोह है, चारित्र मोह, दर्शन मोह का साथ मिलने से गड़बड़ ज्यादा कर सकता है, लेकिन जिस चारित्र मोह को दर्शन मोह का साथ नहीं है वो चारित्र मोह पंगु हो जाता है, उसकी ताकत, उसकी कमर टूट जाती है, तो फिर वो ज्यादा बंद करने के लायक नहीं रहता, ऐसा हो जाता। क्या कहा, सर्व कर्म का मूल ऐसा जो ज्ञान और मोह के परिणाम, वे अब भी जीव में वैसा का वैसा चालू रहता है कि जिस परिणाम से जीव ने अनंत काल तक भ्रमण किया है, और जो परिणाम अब भी ऐसा ही बरतेगा, चालू रहेगा, तो वैसे ही वैसे वो अनंत काल परिभ्रमण करेगा, इसलिए अपने परिणाम में पहले विभाव की शक्ति तोड़ने के लिए रस कम होना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। दृष्टांत देते हैं, अग्नि का एक चिंगारी, अग्नि की एक चिंगारी से जैसे सारे विश्व को जला सकता है, अग्नि की एक भी चिंगारी सारे विश्व को जला सकती है, उतना उसमें सामर्थ्य है, ऐश्वर्य गुण है, कितने को जलाए कि सबको जला सकता है, एक में से कितना बड़ा हो जाएगा, चाहिए चिंगारी तथापि उस चिंगारी को जैसा जैसा योग होता है, संयोग मिलता है, वैसा वैसा उसका फल आता है। उसको जलाने के पदार्थ थोड़े मिले तो थोड़े जलाएंगे, ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा जलेगा। लेकिन शक्ति कितनी है, अग्नि की एक चिंगारी में कितनी शक्ति है जलाने की, अनंत शक्ति है। अनंत पदार्थ हो तो अनंत पदार्थ को वो जला सकती है। ताकत को देखना है, चिंगारी का अल्पत्व को नहीं देखना है, उस चिंगारी में पूरी ताकत भरी है उसको देखना है। क्या दृष्टांत है, मुद्दा क्या है,
मतलब ये नहीं कि इसे सामान्य ज्ञान जो है उससे आत्मा को पकड़ना, जैसे सामान्य ज्ञान जो है उससे आत्मा को पकड़ना, मतलब जैसे चिंगारी है वो,
उस चिंगारी में पूरा स्वभाव आत्मा के ज्ञान सामान्य जो खुला बहुत अल्प मात्रा में है, लेकिन वहां स्वभाव पूरा पूरा भरा है। इसलिए ज्ञान लक्षण में, ज्ञान स्वभाव में भी अनंत ज्ञान शक्ति का दर्शन करना, क्या वही अपने आत्मा का दर्शन है और वही अपने परमात्मा का दर्शन है। इसलिए उपदेश वहां से देते हैं। यहां तो ये विभाव की बात कर रहे हैं, जैसे किसी को विभाव कम है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा तो चाहिए ना, तो उसको पूरा चाहिए, उसके विभाव में पूरी ताकत है, ऐसा कहते हैं। जो एक परमाणु को सुख का कारण समझता है तो सारे विश्व के परमाणु को सुख का कारण समझता है, क्योंकि सब एक जाते हैं। तो जिसको एक परमाणु सुख के लिए चाहिए उनको पूरा विश्व भी सुख के लिए चाहिए, तो जितना सुख बढ़ेगा उसका अभिप्राय से, तो वो भी एक चिंगारी की बात हो रही।
मतलब ऐसा भी लेके जैसे हमारे लिए हम स्वयं जीव तत्व हैं, बाकी सब अजीव तत्व हैं, तो किसी के प्रति भी अल्प भी सुख का भाव है तो पूरा लोकालोक का भाव है।
ठीक है, तो वैसे ही होना चाहिए, हम जीव तत्व है, बाकी के सब हमारे लिए हमारी अपेक्षा से अजीव तत्व है, हम भी आपके लिए अजीव तत्व है। नहीं,
पर यहाँ पे सत्पुरुष को बात देते हैं, क्योंकि सत्पुरुष और उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एक के भाव है, तो फिर वहाँ वो बात लागू नहीं
पड़ती। मोक्ष होता है तो उनको एक के भाव होता है, तो फिर अजीव अजीव बना नहीं रहता है, वो बात परीक्षा तो हो जाएगी। जब हम जीव है तो अनंत सिद्ध परमात्मा हमारे लिए अजीब है, ऐसा मानना पड़ेगा, और जीव मैंने मेरा जीव नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन वो सही रूप से निर्ज्ञान करने के बाद है, शुद्ध ज्ञानी होने के लिए वो बात नहीं है।
यहाँ एक बात और है, जैसे जितने ज्ञानी हो चुके हैं वो सब अजीब में आ जाएंगे, पर जिससे उसको लाभ होता है सिर्फ वही जीव में आते हैं।
चलो आगे बढ़ो। क्या कहते हैं, जैसे अज्ञान परिणाम में अनादि काल से जीव को भटकना हुआ है, वैसा अब भी अनंत काल भी 14 राजलोक में सारे विश्व में प्रदेश प्रदेश से अनंत जन्म मरण, अनंत जन्म मरण उस परिणाम से अब भी संभवित होता है, तथापि जैसे तनखे का किनकर चिंगारी का अग्नि के योग वश है, वैसे अज्ञान के कर्म परिणाम की भी अमुख प्रकृति है। क्या कहते हैं कि अज्ञान में शक्ति तो उतनी है कि वो 14 राज लोक में परिभ्रमण करता है अनंत काल के लिए, उतनी अज्ञान में ताकत है। अज्ञान परिणाम में ताकत कितनी, अनंत जन्म वर्ण करने की 14 ब्रह्मांड में उसको परिभ्रमण करना पड़े ऐसी ताकत है। परंतु जितना योग होता है वैसे उतनी अग्नि जलाती है, वैसे जितना उनका योग होता है उतना कर्मबंध होता है और उतना परिभ्रमण करता है। ताकत तो बहुत है लेकिन करता है कितना, कि जितना योग होता है उतना परिभ्रमण होता है। उस अज्ञान परिणाम में ताकत तो बहुत है। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट एक जीव को मोहनी कर्म का बंधन होता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों का होता है, ऐसा श्री जिन ने कहा है। देखो वो बात लिया है कि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मैंने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक जीव को मोहनी कर्म का बंधन होता है, दर्शन मोहनी लेना वहां तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों का होता है। 70 करोड़ सागर, उसको 70 करोड़ सागर से गुना जाए, 70 करोड़ सागर से जितना आवे उतना दर्शन होने का उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा स्थिति बंद पड़ता है। इसका मतलब वो हो गया कि जीव के मिथ्या सिद्धांत के परिणाम में सबसे ज्यादा जीव को बांधने की ताकत है। तो मिथ्या तो जितना गलेगा उतना वो ज्ञान दिशा के प्रति आगे बढ़ेगा, तो उत्कृष्ट आगे बढ़ करके वो ज्ञान दिशा को प्राप्त होगा, वहां से अबंध दिशा चालू होगी, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं।
जैसे है कि इतना अनुभव बताया है फिर भी अगर जीव पूर्णता का ध्येय निश्चित करके सत्पुरुष के प्रति मुंह कर ले तो ये अनुभव तुरंत उसका जो गल जाएगा, इसका जो शक्ति है उस पर प्रहार हो जाएगा, शक्ति टूट जाएगी।
क्यों ऐसा सत्पुरुष के प्रति कोई मोह करता है ठीक है,
निर्मोही बना देता है, ऐसा मोह भी करना उचित है।
उसमें दर्शन मोह की शक्ति टूटती है। कैसे, तो निर्मोही पुरुष के प्रति दर्शन मोह का अभाव है, उसकी महिमा उसको आई तो वो तो मोह जो नाम है वो तो व्यंग से दिया जाता है, उसको वास्तव में मोह किया जाता नहीं है। लेकिन जीव मोह का अनुभव को पहचानता है तो जीव को मोह का अनुभव की भाषा से वो मोह को बदला है, वास्तव में उसको मोह कहने में आता नहीं है। तो कृपालुदेव ने वो शब्द प्रयोग किया है 217 में, वो बात दिया है कि ये कैसी बात है, जीव को महात्मा के प्रति मोह भी नहीं हुआ, ऐसा करके लिखा है। ये कैसा विचित्र है, और जगह तो मोह करता है लेकिन महात्मा के प्रति मोह क्यों नहीं करता है। निरंजन हालत में रखते हैं, उसका आपको आश्चर्य होकर के ये होता है, ये क्या बात है। पत्र नंबर उसने लिया है कि कैसी बात है कि जी को महात्मा के प्रति मोह नहीं हुआ। करीब दोस्तों के करीब करीब परिपूर्ण स्वरूप नाम उनको कणवी और कोली जैसी ज्ञाति में भी मार्ग को प्राप्त मार्ग को प्राप्त हुए ऐसे थोड़े गत वर्ष में बहुत पुरुष हो गए हैं। वे महात्माओं की जनमंडल को मैंने आम समाज को अपिछान होने से पहचानते नहीं होने से तो कोई ही उन लोगों से अपना परमार्थ सद सका है। जीव को महात्मा के प्रति मोह ही नहीं आया, ये कैसी ईश्वरी अद्भुत नियति है। क्या वचन प्रयोग है देखो, मैंने क्या कहना चाहते हैं कि बहुत से महात्मा हो गए लेकिन लोगों ने पिछाना भी नहीं। ऐसे ऐसे महात्मा हो गए कि लोग पिछान नहीं सके और नहीं पहचान करने से अपना जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए उससे वंचित रह गए, बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा निमित्त तो होते हैं महापुरुष में कि उनके निमित्त से दूसरे लोग टिक जाते हैं, हम उनको पहचानते नहीं है तो जो नहीं पहचानते हैं इस कारण से लोग उनके आत्म कल्याण करने से वंचित रह जाते हैं। तो जीव को महात्मा के प्रति मोह ही नहीं आया, ये कोई विश्व की जो व्यवस्था है वो अनादिकाल से ऐसी व्यवस्था है। बहुत से महात्मा होते हैं जिनको लोग पहचानते नहीं, और पहचानते तो उनका कल्याण हो जाता, पहचानते नहीं हो तो कल्याण से वंचित रह जाता। तो ये कैसी नियति है, नियति मैंने विश्व व्यवस्था है कि ऐसा भी होता है, हमको तो आश्चर्य होता है। एक ऐसी कोई अद्भुत नियति है, विचित्र बात है ये। ज्ञानी होवे और ज्ञानी से तिरने की जो परिस्थिति हो बने नहीं, ये कैसी विचित्र बात है।
और बिना पहचाने भी माने तो आत्म कल्याण से वंचित रह जाते हैं,
रह जाते हैं बिना पहचान से माने उनसे भी वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहना है कि वास्तव में एक बड़ा नुकसान का अफसोस होता है, बड़ा नुकसान का अफसोस होता है कि ऐसे महात्मा हुए इनके पहचानते तो कितना लाभ हो जाता, दूसरे जीव संसार से तीर जाते तो वो तो चले गए, हमको तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपना साधन करके सिद्धालय में चले गए, चले जाएंगे। लेकिन ये कैसी विचित्र जगत की घटना है, विचित्र अद्भुत विचित्रता है कि ऐसे ऐसे होने पर भी लोग पहचानते नहीं है और अपने परमार्थिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। जीव को और चीज का मोह होता है, महात्मा का मोह क्यों नहीं होता है, ऐसा करके उन्होंने व्यंग से वो बात किया है। शब्द तो वो लिया है, क्योंकि जिसका मोह होता है उनके पीछे जीव का परिणाम है, वो लगा रहता है, छूटता नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाता ज्ञानी के प्रति तो इस जीव का छुटकारा हो जाता।
नहीं पहचाने
वो हम चुप
रहे, साथ में तो रहे लेकिन फिर भी नहीं पहचाने।
लेकिन क्या है कि जिसने नहीं पहचाना वो वंचित रहे, और जिन्होंने पहचाना उनका तो आत्महित होगा ही होगा। लेकिन कई महात्माएं ऐसे हुए हैं कि जगत ने पहचाना ही नहीं उनको, जाना ही नहीं उनको कि कोई ज्ञानी हुए थे, तो वो तो अपना कार्य करके सिद्धालय में चले जाएंगे, उनको तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको हुआ? जगत के जीवों को नुकसान हुआ, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा कहना चाहता हूँ। उसको सत्ता समर्थन भी प्रयोग किया है, वरना ये मोह करने की बात कहां से आई? मोक्ष को भी मोह करना चाहिए क्या? ये बात कहां से आई? ये भी बात अपनी भाषा में तो लिखी है गोपाल ने।
यहाँ पे शास्त्र ज्ञान के शब्दों को भिड़ा देते हैं, क्या ये बंद का कारण नहीं है?
बंद का कारण नहीं मतलब,
जैसे शास्त्र ज्ञान का सूक्ष्म कैसे मार खाता है, यहाँ पे भी भिड़ा देते हैं, यहाँ पे भी तो सतपुरुष के प्रति इनका मोह बंद का कारण है। तो बंद का कारण कैसे है? ये तो मुक्त बनाने का कारण है, उसको बंद का कारण मान
लिया। सही, तो बंद का कारण उसको नहीं लेना चाहिए। जिससे दर्शन मोह गल जाता है, यानी सबसे बड़ा बंद ढीला हो जाता है, उसको बंध का कारण मानना वो न्यायोचित नहीं है, न्याय से उचित नहीं है। वो जो परिस्थिति सही है उसको देख नहीं सकता है, इसका मतलब वो है। जैसे कानून है उसका कोई उतना इम्प्लीमेंटेशन करे कायदे का, आप लोग तो जानते हैं ना, जो एडवोकेट हुए हैं, LLB हुए हैं, तो लोग क्या कहेगा, इम्प्रैक्टिकल बात होती होगी। तो ये कायदा तो जड़ है, क्या है, कानून है तो जड़ है, इम्प्लीमेंटेशन तो चेतन को करना है, जरा सोच समझ के करना चाहिए, वरना वो तो जड़ है। अगर उनको वैसे ही लगा देंगे तो लगाने वाला भी जड़ माना जाएगा, वो भी जड़ जैसा है। ऐसा मोह है वो मोह है, अज्ञान है वो अज्ञान है, फिर भी जब परिस्थिति पलटती है और कोई जीव आत्म उन्नति के परिणाम की श्रेणी में प्रवेश करता है और आत्म उन्नति के परिणाम की श्रेणी में आगे 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 बढ़ता रहता है, उनको भी दूसरे अज्ञानी के खाते में खता ले, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हुआ है, वो जड़ कायदा की बात है, कायदा भी जड़ हो गया वहां। इसलिए तक द्रौपदी ने तो जगा रखकर के बोले, किसी जीव आश्रय इस बात को दूर रखकर के हम बात करते हैं, सबके लिए वो बात नहीं कर रहे हैं, अपेक्षा रखिए, किसी जीव को दूर रखकर के हम कहते हैं कि अज्ञान से अनंतकाल का वध होता है, मोह से अनंतकाल का वध होता है। तो जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जिसको मोह का अभाव नहीं, सब आ जाते हैं कि नहीं, कोई जीव नहीं भी आते हैं, ऐसा कहते हैं।
जो बंद से छुटाने का कारण बने वो बंद का कारण नहीं, वो मोक्ष का कारण है।
ठीक है, लेकिन वो कारण का कारण है, इसलिए लोग समझते नहीं है,
इसीलिए तो परिभ्रमण चालू है।
बंद का कारण तो क्या है, अभंध परिणाम है, और अभंध परिणाम के निमित्त वो है कारण है, तो कारण के कारण है, इसलिए लोग नहीं समझते। देखो अभी तो उसको ज्ञान हुआ नहीं,
इसीलिए परिक्रमण चालू है जीव का, कारण के कारण को भी नहीं समझते और समझने का भी प्रयास नहीं करते।
तो इसका मतलब क्या है कि हम पेड़ को फल को स्वीकारते हैं, पेड़ फल को हम खाते हैं ना, आम खाते हैं, कैरी खाते हैं, तो उनको मीठी लगती है, स्वीकार करते हैं, कहाँ से मिलती है तो पेड़ से मिलती है, तो पेड़ को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन पेड़ हुआ कहाँ से, उनका मूल न से, तो मूल तक तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मूल कहाँ से आया कि इसके बीज में से आया है, तो बीज को अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं तो न हमको मूल मिलने वाला है, न हमको पेड़ मिलने वाला है और न हमको आम मिलने वाले हैं। तो बीजभूत बात क्या है, तो बीजभूत बात को पकड़ने चाहिए। वह केवल तो बीज ज्ञान ही कहे, केवल ज्ञान का बीज क्या है, केवल ज्ञान का बीज का क्या है, क्या है लिखा है, ज्ञान का बात लिखा है, बिन सदगुरु को ये न भेद लहे और पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, वो सब केवल ज्ञान का बीज की बात का है। आखिर में कहा यह सब केवल ज्ञान का बीज है,
केवल ज्ञान के बीज का बीज,
केवल ज्ञान का मूल है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का बीज है सही मुमुक्षुता, सही मुमुक्षुता का उत्पन्न होना। कल आए ने वो तो क्या अपूर्व विचार कौन सा पत्र था, अपूर्व ज्ञान अपूर्व विचार से होता है और अपूर्व विचार अपूर्व पुरुष के समागम से होता है। पांच सौ पहले के पहले कितना है, जीव को पूर्व काल में लिखने का उपाय जो है वो पूर्व विचार बिना नहीं, अपूर्व विचार अपूर्व पुरुष के आराधन बिना नहीं ले आए, अपूर्व पुरुष के आराधन में देंगे पहले करेंगे, सही बात है। तो बात घूम करके फिर वहां आ जाती है कि बिना ज्ञानी ज्ञान होता बीज वहां पड़ा है, केवल ज्ञान का बीज वहां पड़ा है। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट एक जीव को मोहनीय कर्म का बंधन होता है तो 70 कोड़ा कोड़े साधकों का होता है, ऐसा श्री जिन ने कहा है, इसका हेतु स्पष्ट है कि जो अनंत काल का बंधन होता हो तो फिर जीव को मोक्ष नहीं होगा, अनंत काल का बंधन हो तो जीव का मोक्ष अनंत काल तक नहीं होगा, लेकिन वो बंध निवृत्त होने से पहले ही और लगभग उसका बंध स्थिति पूरा होने की परिस्थिति के काल में दूसरे वक्त वही स्थिति का संभव हो जाता है, ऐसे जीव के परिणाम हो जाते हैं। परंतु ऐसा मोहनी कर्म कि जिसकी काल स्थिति ऊपर कहीं है वैसे एक समय में बहुत बांधे, ऐसा नहीं बनता है। 70 कोड़ा कोड़ी का एक समय में एक वक्त पड़ता है, वो पूरा हुए उसके पहले दूसरा पढ़ सकता है, वो पूरा हुए उसके पहले तीसरा पढ़ सकता है, लेकिन एक काल में अनंत काल का बंध नहीं पड़ता, इसलिए बंध को निवर्तन होने में अनंत काल नहीं लगता, इसलिए प्रवाह क्रम से अनंत काल चलता है, ऐसा कहा है। इसे स्पष्टीकरण देंगे समय
Aho, aho, Sri Sri.